नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगों के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। यह घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री एलिए बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोनास योनोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।